और उनके अंदर में शक्ति संचरित की, बातचीत भी की। और भी ध्रुव जी ने ध्यान में ही भगवान का दर्शन किया, उन्होंने बहुत से प्रमाण दिए और कहा जी यहीं पर आकर के तुम ध्यान लगाओ और यहां से कहीं मत जाओ। किंतु ये गोपाल मंत्र जपते थे इसलिए इनकी इच्छा ये हुई हम तो साक्षात बाल गोपाल का दर्शन करें। बहुत समझाने पर भी नहीं माने तो फिर यहां से महाजनक तप अंत में सतलोक गए। वहां पर देखा क्या, ब्रह्मा जी सहस्र शिष्या भगवान की आराधना कर रहे हैं और वो साक्षात रूप में यज्ञों का फल पा रहे हैं और मुह मांगा वरदान वरदान इत्यादि दे रहे हैं। लक्ष्मी जी के साथ वहां पर हैं। इस तरह से रहते रहते ब्रह्मा जी अपने काल से परार्ध तक और परार्ध के बाद में द्वितीय परार्ध तक ये सब काम करते हुए वहां पर रहे, पृथ्वी का सृजन इत्यादि। और कृष्ण के गौए बछड़ों को भी चुराया, इन्होंने ये सब देखा। इसके बाद में जब फिर सृष्टि आरंभ हुई, उन्होंने बतलाया है सनातन गोस्वामी ने कौन से ब्रह्मा के बाद में उन्होंने वो ब्रह्मा हुए, ये सब इसलिए झूठी बात नहीं है, ये सब कल्पना नहीं। इसके बाद में उन्हीं को ब्रह्मा बना दिया गया। देखा जाए और कोई योग्य नहीं तो विष्णु ने इनको ब्रह्मा बना दिया, गोप कुमार को ये ब्रह्मा हो गया। किंतु वेश नहीं बदला, उसी में रह करके सृष्टि का कार्य और ये सब का काम करने लग गए। मंत्र किंतु एक दिन भी नहीं छोड़ा। इसके बाद में ब्रह्मा जी के काम में ऐसे व्यस्त हो गए जो भगवान जी का स्मरण करने का ये मौका नहीं मिलता। अब वो दुखी होने का कारण हुआ, नारद जी भी शायद मिल गए। इस तरह से वहां का जो ब्रह्मा जी के अंदर में जो दोष हैं इसको समझ करके फिर इनका भी मन नहीं लगने लगा। अब क्या करें, यहां पर शायद गुरु जी मिले या नारद जी मिले। देखला है जब ब्रह्मा जी अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं और विराट ऐश्वर्य में हैं कि उनको समय नहीं मिलता है जो भगवान की आराधना करें। इसलिए देखा जी हम कैसे करें। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि मनुष्य लोक में हमारा जन्म हो, भगवान का भजन करके रसिक वैष्णव का संग मिले और मैं गोलोक वृंदावन की हमको प्राप्ति हो। यहां तक कि गोपाल मंत्र भी करते हैं, काम गायत्री भी करते हैं, किंतु उसका फल ले जाते हैं सृष्टि इत्यादि का। इसलिए इनको वहां पर भी विरक्ति हो गई। अब क्या करेंगे, तो वहां से उनको हुआ ऐसा जैसे अब यहां से उधर में नहीं जा सकते, आप वहां से पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। तब पृथ्वी लोक में आकर के वृंदावन या जगन्नाथपुरी में वहां पर आए, फिर गुरु जी से भेंट हुई। इसके बाद में आगे की बातें इस तरह से साधन करते हुए बतलाओ तो कितना समय लग रहा है। ऐसे बाल में होता है जो थोड़े समय में हुआ, किंतु थोड़ा समय नहीं। इस तरह से साधन भजन हम लोग यदि करें तो धीरे 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 ऐसी अवस्था हो करके अथवा एक बाय एक भक्ति के प्रभाव से इन सब लोगों को पार करके बैकुंठ में पहुंचा जा सके, गोलोक वृंदावन में पहुंचा जा सके। आज वंचा कथा
काकू भर गद गदयाच जाचे निपत्त भूमि दंडवतोटरती आशा प्रसाद मबुदस्य जनश्रुति गंधर्विके तव गणी गण अंग श्यामलिं छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दे वरम जड्डञ्जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेम् दामो भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्त्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणं
बतलाया था अत्यंत, उसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से बतला रहा है। वो जब वृंदावन में कुरुक्षेत्र से लौटे तो फिर वो वहाँ से पुरुषोत्तम का विरह उनके अंदर में आया। जब पुरुषोत्तम की बड़ी याद आने लगती, वहाँ पर नित्य नवीन उत्सव होते हैं और मैंने वो सालग्राम इत्यादि राजा और पुरुषोत्तम होकर के फिर लौटे थे। फिर वहाँ से जब अब चल रहे हैं तो वहाँ पर जब पहुँचे वृंदावन में तो प्रातः मंत्र जप करते हुए पुरुषोत्तम जब जाने रास्ते में ही कुछ लोग मिले जो इंद्रलोक की प्रशंसा कर रहे थे और इंद्र की जो वो श्रेष्ठ भक्त हैं। पहले मंत्र जपते ही जपते जपते और कामना के साथ में मंत्र जप किया तो देखा जैसे वो
स्वर्गलोक में पहुंचे।
फिर स्वर्गलोक में जाकर के इंद्र का सौभाग्य देखा और खुद वो इंद्र बने। कैसे इंद्र बने? कहीं कामाशक्त होकर के इंद्र किसी ऋषि पत्नी के पास में गए और उनके अभिशाप के डर से भाग गए। उस समय में ये इंद्रपद पर आशिक्त हुए, अभिषिक्त हुए। अब ये सब इंद्र का काम खुद करने लगे तो वहाँ पर बतलाया जैसे क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या असुविधाएं। पहले तो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये अमृत पान से और वहाँ के ऐश्वर्य से बढ़ जाएगा, इनकी तनिक भी कमी नहीं होगी। यहाँ पर जो साधन की सुविधाएं हैं वहाँ पर साधन की सुविधाएं नहीं हैं। जैसे यहाँ पर हरि कथा होती है वहाँ पर हरि कथा कहीं नहीं होती, वहाँ तर भोगों की प्रचुरता है। विशेष करके इंद्र का इंद्रत्व 1000 चतुर्जेगी बीतने पर वो इंद्र बदल जाएंगे। उनका भी समय थोड़ा सा, और वहाँ पर असुरों का भय, जैसे बलि महाराज ने इनको निकाल करके बाहर कर दिया, भोग सब छीन लिए, भोगहीन होकर के छिपे हुए घूम रहे हैं। कभी ब्रह्म हत्या का पाप इन पर लगता है तो घूमते फिरते हैं,
बिना खाए पिए।
किसी प्रकार से उनके पाप को विभाग करके और उनके पुण्य ले करके तो फिर किसी प्रकार से बचते हैं। सब समय अपने राज्य की वो रक्षा करने में चिंता में उनकी लगी रहती। भगवान का भजन क्या करेंगे? विशेष करके जब ये इंद्र हुए थे इनको ये प्रतीति हुई और इनको भजन करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए बड़े दुखी हो गए। उसी समय में भृगु इत्यादि महर्षि लोग आए तो जितने देवता थे इंद्र इत्यादि सब उनके मस्तक, इनको भी कहा जे तुम भी मस्तक नवाओ, तुम तो इंद्र है। देखा जैसे ये ऋषि लोग हैं कौन, भृगु महर्षि, और इनको हमारे द्वारा प्रणाम करा रहा है और अपने जितने देवता लोग हैं सब प्रणाम कर रहे हैं। मुझे ये कौन है? अरे तुम नहीं जानते, ये भृगु ऋषि हैं, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र इत्यादि हैं, तुमको इनको प्रणाम करना चाहिए। नहीं प्रणाम करने से ही अभी संपाद देंगे तो तुम फिर कहाँ रसातल में चला जाएगा। तुमका महर्षियों का ये सब प्रभाव सुना, सुन करके मंत्र जपते करते 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 अजय क्यों नहीं महर्षि लोक में हम जाएं, महर्षि लोक गए, वहाँ पर उनका प्रभाव देखा, बड़े विस्मित हुए, अजय अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो पृथ्वी लोक में भोर भुआ स्वहज जलने लगा प्रलय में, तो एकदम वहाँ के जितने लोग हैं सब भगे, वो लोग जन लोक को पार करके तब फिर तपोलोक में पहुंचे। तपोलोक में कौन कौन है? सब मुख्य रूप में चार हैं, सनक सनंदन सनातन सब और पिपलायन इत्यादि, कवि हवि अंतरिक्ष पिपलायन इत्यादि बड़े बड़े ज्ञानी आप लोग वहां पर हैं। तो उन लोग वो लोग सब समय ध्यान करते हैं। उन लोगों ने जब इनकी, जबकि वहाँ पर भी रुचि नहीं लगी मदन गोपाल मंत्र जपने पर, तो पिपलायन ऋषि से इनकी वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि साक्षात दर्शन से स्मरण श्रेष्ठ है, इसलिए स्मरण माने ध्यान, तुम ध्यान करो, ध्यान में ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अभी इनका मन नहीं लगता, तो एक दिन सनत सनंदन सनत कुमार ने इनको बाल गोपाल रूप से दर्शन दे दिया। बड़े प्रसन्न हुए, यही तो बाल गोपाल हैं। फिर देखा जैसे ये तो क्षण मात्र के लिए हुए, सब समय के लिए तो नहीं, हमारे साथ में तो खेल रहे हैं, न कूद रहे हैं, न बातचीत कर रहे हैं, न कुछ प्यार कर रहे हैं, न प्यार ग्रहण कर रहे हैं, तो उनका मन फिर खराब हो गया। तो कभी कभी वो लोग इनको सांत्वना देते किंतु इनके समझ में नहीं आता। एक दिन देखा जैसे वृद्ध पितामह ब्रह्मा जी आ रहे हैं, वो जा रहे हैं पुष्कर क्षेत्र में, पृथ्वी में। पृथ्वी में किस लिए जाते हैं? वहाँ तो साधन भजन ब्रह्मलोक में नहीं होगा, इसलिए साधन भजन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इसलिए हाँ, इसलिए ब्रह्मलोक में भी साधन भजन नहीं, सत्यलोक में भी नहीं। इसलिए जब उनको थोड़ी सी फुर्सत ले करके जब उससे कुछ विरक्त हो जाते हैं उस काम से, ब्रह्म के कार्य से, सृष्टि और सब कामों से, या और कुछ कारण से मन उब जाता है, या भगवान के चरणों में कुछ अपराध कर देते हैं, तो वो पृथ्वी लोक में आते हैं। तो सत्ययुग में पृथ्वी में पुष्कर श्रेष्ठ होता है, तो वहाँ पर आए। यज्ञ इत्यादि होता है ना, यज्ञ के द्वारा उनको प्रसन्न किया जाता है, तो वहाँ पर आते हैं। जब वो आ रहे थे तो रास्ते में इनके लोक में, पिपलायन के लोक में, तप लोक में इनसे देखा, कहा जी ये कौन है? तो वहाँ पर सनक सनंदन इत्यादि ऋषियों ने कहा, जे तुम नहीं जानता इस लोक में रह करके, जे ये कौन है? यही तो ब्रह्मा पितामह है जिनके लड़के हम लोग हैं। अरे ये सहस्र शीर्षा पुरुष की जो आराधना करते हैं सहस्र पुरुष में और इनमें तथा विष्णु में, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। आज हम लोग का परम सौभाग्य है कि ये आ रहे हैं। ये किस लिए बतला रहे हैं? तारतम्य बतला रहे हैं। दो तरह का तारतम्य, एक भक्तों का तारतम्य और एक भगवत आविर्भाव का तारतम्य। भक्त सब तत्वतः एक ही तो हैं, वैसे भगवान भी एक ही तत्वता हैं, कृष्ण से लेकर के विष्णु तक, वामन इत्यादि ये सब विष्णु तत्व ले लो, सभी एक ही, यहाँ तक ही शालग्राम तक भी सब एक ही तत्व हैं। किंतु भगवान में शक्ति और रस के प्रकाश के तारतम्य से उनमें तारतम्य है, शक्ति प्रकाश और रसगत व्यापार, इन दोनों के तारतम्य से विष्णु के जितने भी प्रकाश हैं उनमें तारतम्य है, इसलिए शालग्राम और कृष्ण एक है तो है भी एक नहीं है। शालग्राम में रस स्वयं का नहीं दिखाई पड़ता,
ये दिखाई पड़ेगा भक्ति के तारतम्य से भक्तों के द्वारा। यदि उसी शालग्राम को वो राधा कृष्ण मान लें, गिरिराज को राधा कृष्ण मान करके उनकी आराधना करते हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी गिरिराज को माना, बहुत से भक्त कोई इनको बावन मानते हैं, कोई निसिंह मानते हैं शालग्राम शिला को, कोई हयग्रीव मानते हैं, कोई ऋषिकेश मानते हैं, कोई दामोदर शिला मानते हैं, बहुत शुभ मानते हैं, कोई निसिंह शिला बड़ी भयंकर मानते हैं। इस तरह से उनके 24 प्रकार के आविर्भाव हैं शालग्राम के, उनमें कुछ भक्ति कार्य के वजह से तारतम्य है। इसी तरह से समस्त अवतार ही भगवान ही हैं, किंतु शक्ति के प्रकाश के तारतम्य से और रस के प्रकाश के तारतम्य से इनमें कुछ तारतम्य विद्यमान है। उसी पर ये तारतम्य किस लिए, भक्तों के तारतम्य से है उनका तारतम्य। भगवान तो एक ही हैं, एक ही प्रकार का भाव है, किंतु जब जिस भक्त के पास में वो रहते हैं तभी उनका वो आविर्भाव होता है। इसी तरह से इन चीजों को दिखला रहे हैं। अब जब वहां आए वहां तो वो ब्रह्मा जी को देख करके ऐसे उनकी स्पर्धा, उन्होंने कहा जैसे तब इस लोक में हम क्यों रहे, तो हम क्यों नहीं ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा के समान देखें। बस उन्होंने बैठ करके मंत्र जपना आरंभ किया और देखा जब उनका शरीर ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर वो चले गए ब्रह्म, और वहां देखा सहर्ष शीर्षा पुरुष सोए हुए हैं और उनका पर्ण चरण पलोट रही है लक्ष्मी, और सब देवता लोग ब्रह्मा स्वयं उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं। इस तरह से कुछ दिन गया, प्रभु ने इनको देख करके अपने पास बुलाया, अपना चरण उनके सिर पर रख दिया, बड़े प्रसन्न हो कि आज हमारा सौभाग्य ऐसा, अब मैं इस लोक को छोड़ करके कहां नहीं जाऊं, कहीं नहीं जाऊंगा, किंतु मंत्र जपते रहे। मंत्र जप का प्रभाव या कि ये भी उनको फीका लगने लगा, अभी हम लोग इस मंत्र को जप रहे हैं संसार फीका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फीका लग रहा है, शरीर के सजाने में, भोगों को भोगने में, वैभव रखने में ये रुचि कहां जा रही, संसार की अपेक्षाओं को हम नहीं छोड़ पाते, स्थूल रूप से समझ रहे हैं, किंतु भक्ति होते ही ये जरूर रूप में जितनी भक्ति होगी उतने रूप में ही अनुभूति भी होती जाएगी, किंतु भक्ति होनी चाहिए तो, नहीं तो सगुणा भक्ति होने पर यह ऐश्वर्य प्रतिष्ठा और ये सब चीजें अच्छी लगेगी। तो ब्रह्मलोक में भी जाकर के अपने स्वरूप में ही रहे, वो बालक के रूप में ही, और वहां पर गोपाल मंत्र भी कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद में उन्होंने देखा एक समुद्र से फेन निकला, अब फेन से देखा ये एक असुर उत्पन्न हो गया, और असुर उत्पन्न होकर के ब्रह्मा को खदेड़ा, अब ब्रह्मा भागते 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 त्रिभुवन में भागे ऊपर नीचे आदा, किंतु वो छोड़ा नहीं, तब वो ऐसे जगह में भागे जो जिसको ये इनको असुर नहीं देख सकता, अब ब्रह्मलोक हो गया खाली। तो अब बिना ब्रह्मा के ब्रह्मलोक कैसे चले, अब वो जो हिरण्यगर्भ हैं, एक विराज एक हिरण्यगर्भ, विराज माने ब्रह्मा हुए समष्टिगत जीव हुए ब्रह्मा, ये है विराज, यही सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, किंतु जिसे वो शक्ति पाते हैं उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। उन्हीं से वह शक्ति पाते हैं। उन्होंने वही सरसा पुरुष है, उन्होंने आदेश की दिया जे इसी को ब्रह्मा बना दो और ये सब काम करे, बस यही ब्रह्मा बन गए। कुछ लालसा थी बस हो गया, अब वो ब्रह्मा होकर के जगत का काम करने लग गए और इतने निविष्ट हो गए जो गोपाल मंत्र भी जपने का समय सहज नहीं मिलता, तभी किसी न किसी प्रकार से गोपाल मंत्र जप लेते और दिन रात सृष्टि के कार्य में करते करते भी इनको विरक्ति होने लग गई। हम लोग को कभी कभी विरक्ति होती है किंतु कुछ सुख मिल करके अब बस विरक्ति भी भाग जाती है, एकांतिक भजन की स्पृहा नहीं है। तो उससे उनकी वो जाति नहीं स्प्रिया। आ मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, सनक सनंदन तक भी हमारी प्रतिष्ठा करते हैं, हजारों इंद्र हमारी आराधना करते हैं। मैं जिसको जो वर देता हूँ वही हो जाता है, इसलिए वहां पर भी शांति नहीं है भाई। ब्रह्मलोक में भी उसी समय में एक दिन हुआ क्या कि एक पृथ्वी लोक में साधन करता हुआ एक व्यक्ति को, एक जीव को मुक्ति मिली और वो मुक्त होकर के जा रहा था और वो सब लोगों को धड़ाधड़ पार करते हुए भोर भुआ सह मह जाना तप यहाँ तक कि सत्य को भी पार करके वो चला गया। अब वहाँ पर जितने लोग थे सब लोग उस मुक्त पुरुष की वंदना स्तौ स्तुति करने, आओ आज परम सौभाग्य है आज कोटि कोटि लोगों में से एक आदमी मुक्त होकर के। भाई मुक्ति किसको कहते हैं, अभी तक इनको ज्ञान नहीं मुक्ति किसको कहते हैं। किंतु देखो इस गोपाल मंत्र के जपने से ऐसा जी अभी तक देखे ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं, ब्रह्मा का काम कर रहे हैं। अब वहां पर जब उनको ये होने लगा तो उन्होंने उन लोगों से पूछा, भाई ये मुक्ति क्या चीज है, मुक्ति मेरी समझ में नहीं आता। तो ये ब्रह्मलोक के पाने प्राप्ति से भी ये मुक्ति बढ़ करके है, तो ये तो उसके हजार लाखों भागों में से एक कण भी यहाँ पर सुख नहीं है जो मुक्ति में सुख है। और इतने में वहाँ पर श्रुति स्मृतियाँ, श्रुति स्मृति पुराण तंत्र महापुराण महा उपनिषद इत्यादि सब लोग उनकी सभा में रूप धारण करके वहाँ पर बैठे हुए। उसमें कुछ स्मृतियों ने और कुछ उपनिषदों ने कहा कि भाई ये मुक्ति ऐसी है कि वहाँ पर दुख का लेश नहीं है, उसमें आनंद का समुद्र वहाँ पर बहता है और ये मुक्ति ऐसी दुर्लभ है जो बिना ज्ञान के ये कभी प्राप्त नहीं होती, एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही ये मुक्ति। ज्ञान का स्वरूप क्या, ज्ञान का स्वरूप जे मैं ब्रह्म हूँ, अभी हमने समझ लिया कि मैं जीव हूँ, ये अज्ञान दूर होना ही, अज्ञानता का दूर होना है, यही इसी का नाम ज्ञान है। उसी समय में आत्यंतक दुख निवृत्ति रे व मुक्ति होता है, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए हम पार कर जाएंगे। वह जीव जगत में बहुत सुदुर्लभ है, बिना इस ज्ञान के कभी नहीं होगा। तो वहाँ पर कुछ तंत्र थे, तंत्र माने जैसे नारद पंचरात्र और सब तंत्र थे और कुछ पुराण थे विशेष, कौन पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि, ये सब पुराण थे। उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसी बात मत करो, ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं होती, लाख बार करो
उस ज्ञान के साथ में भक्ति मिलकर के भक्ति के द्वारा ये सब मुक्ति अनायास ही पाया जाता है। तो वहां पर कुछ महापुराण और महा उपनिषद थे, उन लोगों ने ऐसे सिर हिलाए, ठीक। और कुछ जो महा और जो थे पुराण और स्मृति विशेष करके और जो उपनिषद थे, उन लोगों ने पहले वाले का समर्थन किया, भाई जैसा भी कोई कहे किंतु बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, ज्ञानारीते मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, अतएव ज्ञान ही के द्वारा मुक्ति। और इन लोगों ने कहा भाई भक्ति से भी मुक्ति कजे कभी नहीं होती, जैसे कि गोपाल चपाल इत्यादि उनके दरबार में हुआ था, हिरण्य गोवर्धन माने रघुनाथ जी के पिताजी के दरबार, कहे भक्ति के द्वारा मुक्ति कैसे मिलती, भक्ति तो उपाधि है, भक्ति स्वयं तत्व नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान जहाँ पर है इस ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इन लोगों ने कहा कि भक्ति की जरूरत नहीं, भक्ति के आभास से ही, नाम के आभास से ही भागवत और जो पंचरात्र और जो थे सब लोगों ने अनुमोदन किया। अब कुछ तर्क होने लगा तो उन्होंने मुक्ति की प्रशंसा के साथ साथ में ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है ये स्थापित किया। और छोटे छोटे जो पुराण हैं वो लोग कुछ दब गए। तो महापुराण जो थे, महापुराण माने श्रीमद् भागवत और उनके अनुगत शास्त्र थे, और जो गोपाल तापनी उपनिषद इत्यादि जो उपनिषद हैं, इन सब लोग सभा कक्ष छोड़ करके चले गए, बाहर में बहिर्गमन किया, संसद से बाहर चले गए, बहिष्कार किया। अब जो अध्यक्ष थे संसद के, जो अध्यक्ष माने ये ब्रह्मा थे, तो ये तभी प्रौढ़ थे नहीं, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर में कलंक लग जाएगा यदि ये सभा गड़बड़ हो गई तो, इसलिए दोनों पक्ष को फिर से लाना चाहिए और फिर से इन लोगों में कुछ सुलहनामा हो करके एक सार्वजनिक सिद्धांत होना चाहिए, इसलिए सबको बुलाया, इनको बुलाया, इनके चरण इत्यादि सब पकड़े। पर पकड़ने के बाद में इन लोगों ने कहा जैसे देखो तुम पहले समझो, तो भागवत ने इनको समझाना आरंभ किया, ज्ञाने प्रयास मुदुपाशन मंतव जीवंत सन मुखरितांग भवदीय वर्ताम स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभि प्रायशो अजित जीतो अपित श्रेयाशिति भक्ति मुदिश्य ते विभो दीयमानम अपि न गृहणंत बिना मत्सेवनं जता। मुक्ति दिए जाने पर भी भक्त लोग स्वीकार नहीं करते, क्यों, उसमें आनंद नाम की कोई चीज नहीं है, उसमें दुख राहित्य है, दुख तो नहीं है किंतु सुख का लेश नहीं है। कहे कैसे, जब हम सोते हैं तो सवेरे उठते हैं तो हम कहते हैं आज बड़े सुख से सोया, क्या सुख से सोया, हमको कुछ चीज का स्मरण ही नहीं रहा, मैं सवेरे उठा बस देखा, बड़े आराम के साथ आनंद से, आनंद तुमको क्या मिला, कुछ लड्डू पूड़ी या रसगुल्ला मिला खाने के लिए ना, क्या हुआ, तो वो तो कुछ नहीं, हम चुपचाप लेट, उसमें मुझे यही नहीं मालूम था कि ये मैं ही हूँ, मेरी भी कोई सत्ता नहीं थी, तो सत्ता का लोप होना जाना ही ये, इसलिए इसको मुक्ति नहीं कहते। श्रीमद् भागवत कह रहे हैं मुक्ति ही तो अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति, अर्थात मुक्ति हो तो अन्यथा रूपम, तुम्हारा अन्यथा रूप अर्थात तो माया के द्वारा ये जो शरीर स्थूल सूक्ष्म सब शरीर हो गया है और इसी में तुम आसक्त हो करके तुम ये समझ रहा है कि मैं अमुक की स्त्री हूँ, मैं अमुक का पति हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनका पिता हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, यह किस लिए होता है, ये अन्यथा रूप मिला हुआ है, इसमें हमारी तदात्म बुद्धि है जो मैं ही ये शरीर हूँ, इसलिए ये दुख सुख सब जो कुछ समझो। जब ये छूट जाएगा वैष्णव और गुरु की कृपा से दूर हो जाएगा और कृष्णदास मेरा स्वरूप है उसको अनुभूति करके साधन करके तब हम इस अवस्था में पहुँचेंगे, हम अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाएंगे। इसका नाम है, इसी का दूसरा नाम विष्णुआंग्री लाभ, भगवान की चरण कमलों की सेवा प्राप्ति का नाम। इस तरह से श्रीमद्भागवत ने इनको समझाया, इनके समझ में आ गया, ये बात तो यही ठीक है। इसलिए ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, यहां तक कि भक्त लोग ज्ञान का फल जो मुक्ति है जो भक्ति के द्वारा ही होता है, ज्ञान अपने आप मुक्ति नहीं दे सकता, वो भी भक्ति के आभास से, किंतु वैष्णव लोग भक्त लोग इसको भक्ति के मार्ग में बाधा समझते हैं और इसको प्रत्याग करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करते। इन लोगों का संग करने से क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए इनका संग नहीं करते। विषयी लोगों का बल्कि संग करना एक तरह से अच्छा है, किंतु ऐसे ज्ञानी लोग जो मुक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके उसमें मिल जाना चाहते हैं और सदा के लिए अपनी सत्ता को भी नष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसे लोगों का कभी भी कोई संग ना, न पानी पीना है न पिलाना, न खाना है न खिलाना, न पूछना है न सुनना है, नहीं तो संग हो जाएगा, इसलिए इन सबसे दूर रहना चाहिए। किसी कारण से निकट आए तो वो जो कुछ चाहते हैं उनको निरपेक्ष रूप में कुछ दे करके प्रणाम कर, बस इतना ही। पर शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं करो यदि होश में हो, बस। अब वो सुन करके बड़े प्रभावित हुए, प्रभावित होकर के यहाँ पर भक्ति का उत्कर्ष देखा। भक्ति रेवैनंग नयति, भक्ति रेवैनंग दर्शयति, भक्ति बसो पुरुष, भक्ति रेव भूयसी, भक्ति के द्वारा ही भगवान को, भक्त्याय हम एक या ग्राज्य, ये भी इन लोगों ने उसको, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है, दूसरी उपाय से नहीं। किंतु भक्ति कैसी होनी चाहिए, निरपेक्ष, सर्व कामना और संकल्प से विवर्जित, निरपेक्ष होना चाहिए, तब ये होगी। अभी हम लोग सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं हैं। सुनाने के बाद में वो लोग लौटे और उन लोगों ने भी इनके दलील को सुना, युक्ति को, और वो लोग भी नतमस्तक से इस मत को ग्रहण करके अब सर्वसम्मति एक रिजोल्यूशन हुआ उस ब्रह्म सभा में। भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। और ये भक्ति कैसी, जितने प्रकार के ये सब हैं भक्ति करने का, उसमें नाम संकीर्तन नहीं सबसे, इस तरह से ये प्रतिपादित हुआ। अब वो जो उनके जो आराध्य हैं कौन सहर्ष शीर्षा, वो इसको बड़े प्यार करने लगे। अब प्यार करके जब बेटा तुम अब यहाँ मत रहो, अब तुम वृंदावन में जाओ लौटो, वहाँ पर तुम्हारे गुरु मिलेंगे और तुमको उपदेश देंगे, और उनके उपदेश से तू फिर हमको स्थायी रूप में पाएगा, बड़े उत्कर्ष के साथ में रस के सहित पाएगा, है? जाओ तुम। तब उन्होंने वहीं पर बैठ करके गोपाल मंत्र जपना आरंभ किया, वृंदावन का अध्ययन किया और देखा जो वृंदावन के अंदर में उसी कुंज के पास में जहाँ पर मैं तुमसे बतला रहा हूँ वहीं पर बैठे। बल्कि एक और बात बतलाई उन्होंने, देखो आकर के अपने को देखा, जहां पर मैं बैठ करके तुमसे बातें कर रहा हूं यहीं पर फिर मैं पहुंचा, देखा जे गुरु जी उसी कुंज में बैठे हुए और उसी प्रकार से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और कैसे नाम ले रहे हैं, बड़े विरह
के रूप में उनका नाम ले रहे हैं। देख करके मैं उनके चरणों में प्रणत हुआ, तो उन्होंने आंखें खोली, हमको देखा, हमको आलिंगन कर लिया उन्होंने, अब बड़े बड़े प्रेम के साथ में हमको सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा जे गुरुजी, आज तक हमने मंत्र बतलाया किंतु विधि तो आपने बतलाई नहीं, तो थोड़ी सी विधि आप बतला दी। सुनते ही उनका शरीर जो है नाना प्रकार के रंगों से बदलने लगा, अर्थात अष्ट साप्तिक विकार किस लिए, अब मंत्र की के सुन स्मरण करने से ही उद्दीपना, और अपने को रोक नहीं सके। बस उन्होंने ये बतलाया, थोड़ी सी उसकी विधि जो है उसको बतलाते बतलाते जब ही गोपी जन जो शब्द है बल्लभ, जहाँ आया तहाँ मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसके पहले उन्होंने कुछ तो जो बोली से बोल सके थोड़ा सा बतलाया। क्या बतलाया? देखो इस मंत्र के उपास्य हैं गोपाल। ये गोपाल कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं और कहीं नहीं रहते। इनकी प्रधान उपास्या कौन है? उपासक गोपियां, गोपियां सब इनकी हैं, उन्हीं के ये प्राण बल्लभ हैं। इसी रूप में भावना करना जो यहीं पर वो गोपाल हैं, और वही वर्णन कुछ करने चाह रहे थे उसको इंगित से बतलाया, आंख से बतलाया, बोल नहीं सके, गला तो रुद्ध हो गया, तो वो बतलाया जैसे वो बंसी वादन करते हैं, बाएं तरफ में उनकी प्रिया जी रहती हैं, उनके तरफ में लोलुप भरी दृष्टि से बंकिम दृष्टि से देखते हैं, कुछ कहने जा रहे थे इतने में मुझे तो करके गिर पड़े। और जहां उनको उठाने के लिए देखा जैसे कहां गुरु जी, तो ऐसी स्थिति हो गई अब इनको उठाएं, इतने में देखा जैसे अंतर्ध्यान, उनको देखा नहीं। सनातन गोस्वामी जी इस मंत्र की अतिरिक्त अतिशयोक्ति कर रहे हैं ना, ठीक ठीक बतला रहे हैं? ठीक ठीक नहीं बतला रहे हैं, कम ही बतला रहे हैं, वो महिमा पूरी नहीं है। भौजे इतना दिन हमने किया, क्या फल हुआ? हुआ कुछ फल? जितना आप लोगों ने किया उतना हुआ। ऐसे निष्ठा के साथ में चित्त को एकाग्र कर बड़े प्रेम के साथ में इसको किया जाए, जरूर फल होगा, निश्चित रूप अभ्यर्थ। यदि कुछ दोष है तो हमारी मंत्र के जपने की विधि में हमारी कुछ कमी है। विधि माने वही प्रीति नहीं, यदि प्रीति होगी तो जरूर इसका फल होगा ही। अब ब्रज में रह करके मंत्र का ये वर्णन ये करने लगे, थोड़ी दिन के बाद में देखा क्या प्रतिदिन क्या करते, जमुना में स्नान, पासी में जमुना, क्योंकि केसी घाट के पास ही तो जमुना, जमुना में स्नान करते और बड़े प्रेम के साथ में इसका करते, जप करने लगे। कुछ दिनों के बाद में देखा, अरे ये मेरा शरीर है, ये अब भूख नहीं मुझको लगती, प्यास नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे प्रकृति के जो जितने जो कुछ हैं ये सब मुझे नहीं होता, ईर्षा द्वेष ये सब कुछ नहीं रहा, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य तनिक भी नहीं है। मंत्र के प्रभाव से वृंदावन में रहने का सब कुछ से अतीत देखा, देखा मैं जो कुछ कहता हूँ वही हो जाता है, मैं हाथ से ही सुनता हूँ, मैं पैर से भी सुनता हूँ, सभी इंद्रियां सभी का काम कर रहे हैं, ये क्या चीज है? अब अप्राकृतत्व भाव किस रूप में हुआ? मंत्र के प्रभाव से हुआ। कल या परसों हमने जो कुछ कहा था मंत्र और गायत्री के संबंध में, महामंत्र और मंत्र के संबंध में, मैंने पहले जो कुछ कहा था कल कहा, एक ही चीज कहा, समझने में कुछ भूल लोगों को हो सकता है। मंत्र का प्रभाव बहुत है। महाप्रभु जी ने मंत्र के प्रभाव से गोविंद का दर्शन किया ना, और उनको पकड़ने जा रहे थे। ऐसे ये भी मंत्र के प्रभाव से अपने इष्ट देव को वृंदावन में देखा बंसी बजाते हुए, और जब ही पकड़ने गया तब तक अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ तक होगा, दर्शन होगा, उनके प्रति एकाग्र भावना जो होती है वो भी आएगा, सब कुछ हुआ, शरीर से मुक्ति भी मिल, देखो ये काम हो गया। किंतु कृष्ण प्रेम अभी नहीं होगा जैसा होना चाहिए। इस शरीर के द्वारा वैकुंठ में नहीं जा सकता, यहाँ पर कदाचित उनका दर्शन होता है यहाँ इस जगत में, किंतु वहाँ पर नित्य दर्शन होता है। इसलिए भक्त लोग वहाँ पर जाकर के नित्य काल उनका दर्शन करना चाहते हैं, थोड़े से समय के लिए दर्शन में उनको तृप्ति नहीं है। मंत्र काम यह नहीं करा देगा। जैसे उन्होंने नारद जी ने मंत्र के प्रभाव से और ध्रुव जी ने मंत्र के प्रभाव से अपने इष्ट देव का दर्शन किया, इसके बाद में अंतर्ध्यान। महामंत्र के द्वारा नित्य काल के लिए अपने आराध्य को सब समय के लिए प्राप्त करके नित्य धाम में उनकी सेवा में प्रविष्ट हो सकते हैं, ये मंत्र के द्वारा नहीं। प्रेम होगा, सभी कुछ होगा, किंतु प्रभु के साथ में एक साथ में रह करके उनकी नित्य सेवा नित्य वृंदावन में, ये सब अपराकृत लोक में नहीं, यहां हो सकता। इसलिए भक्त लोग चाहते हैं कि नित्य काल के लिए उनकी सेवा हम प्राप्त कर सके, इसलिए इसकी जरूरत है, ये आगे बतलाएंगे। अब जब उन्होंने अपने शरीर को भूतातीत पंचभूत के अतीत देखा, पंचभूत शरीर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, पहले विमान में जाते थे ये, जब गए तो देखा एक विमान आया पृथ्वी लोक से, इनको इंद्रलोक ले गया, और सब जो गए विमान के द्वारा, अब विमान की जरूरत नहीं, देखा शरीर अपने आप उठ करके चला, इसके लिए विमान की, जैसे कि नारद ऋषि मुक्त होने के बाद में सर्वत्र विचरण कर सकते हैं, किंतु यह काम गोप कुमार के लिए कितने दिन के बाद में हुआ, कितना दिन साधन, हम तो आज ही चट रोटी क्या पट रोटी कर लेते हैं, अभी बनाया तवे पर दिया गरम गरम खाना चाहते, साधन भजन नहीं करना चाहते, मन की वृत्तियों को कंट्रोल करना भी नहीं चाहते, काम क्रोध इत्यादि को दूर नहीं करना चाहते हैं, यहाँ तक कि गुरु वैष्णव की आदेश को भी हम नहीं पालन करना चाहते, और चाहते हैं क्या बस ये हो जाए, तो ये कैसे होगा मंत्र के प्रभाव से। अब वो देखा क्या, सूर्यलोक को भेद कर रहे हैं, सूर्यलोक किसको कहते हैं, भोर भुआ सह महाजन तप इत्यादि जो लोक हैं, जहाँ तक सूर्य की रोशनी जाती है उस सबको कहते हैं सूर्य लोक, इन सबको भेद करके आगे बढ़े। अब जो ब्रह्मलोक में जो बैठे हैं, तप लोक में जो बैठे हैं, देख रहे हैं कि अरे ये तो मुक्त होकर के एक आदमी जा रहा है, अब देख करके प्रशंसा करने लगे, इन्होंने हजारों वर्षों में लाखों वर्षों में रह करके जिन लोगों को पार किया था, अब इसको एक एक क्षण में पार करते हुए एकदम उस लोक में पहुंचे इस मंत्र के प्रभाव से। अब इसको ब्रह्मलोक को भी पार करके, माने ब्रह्मा के सप्तलोक को पार करके, आठ आवरण हैं उसमें चले। आठ आवरण कौन कौन है, पृथ्वी का आवरण, जल का आवरण, तेज का आवरण, वायु का आवरण, आकाश का, अहंकार का, महत्तत्व का, ये सात, और प्रकृति का आवरण ये आठ। पृथ्वी का आवरण, पृथ्वी में ये पृथ्वी लोक है ना, पृथ्वी जगत को धारण करती है, अत्यंत सुंदर उनका रूप है, भूदेवी वहां रह करके वो बराह देव की सेवा करती हैं, उनके आराध्य हैं बराह देव, जो पृथ्वी को धारण करता है ना बराह अपने, तो वो उनकी प्रिया जी हैं और उनकी आराधना वहां करती हैं। और ब्रह्मलोक में सप्तलोक में जो जितना वैभव है उसे लाखों कोटि गुण वहां पर वैभव है, वहां रहने वाले जीव लोग पृथ्वी देवी के अधीन रह करके बराहदेव की उपासना करते हैं। जैसे नवद्वीप में पूरा करके वो वासुदेव विप्र आराधना करता, ऐसे ही कितने आदमी हैं। क्या हुआ लाइट चला गया?
चल
एक एक से नौ नौ की आठ आठ, नौ नौ करोड़ गुण एक से बड़ा आवरण है, गुण अधिक। जल में, जल के कौन है वहां पर आराध्य देव? मत्स्य, मत्स्य भगवान है ना, प्रभु का पहला अवतार है ना ये मत्स्य देव जल में रहते हैं, वहां पर वही आराध्य है। वहां पर अनेकों असंख्य जी उनकी आराधना करते हैं मत्स्य भगवान की। इसको पार किया तब आया तेज, तेज में सूर्य है वहां सविता, तत् सवितुर वरेण्य, सविता माने यहां पर उसके अधिष्ठात्र देव तेज के
आराध्य कौन है?
सूर्य के रूप में ही सूर्य के आराध्य देव हैं सविता कोई होंगे। इसके बाद में उसको पार किया और देखा वायु, वायु लोक में प्रद्युम्न जी और आकाश का जो वहां पर आवरण है उसमें अनुरुद्ध जी, और उसको पार करके अहंकार में जब गए तो संकर्षण जी, और उसको पार करके महत्तत्व में गए वासुदेव। ये महत्तत्व ही सबसे सूक्ष्म पर्दा है जो जीव को आवृत करता है, हुआ ना। पंच तत्व ये हुए, पंच तत्व के बाद में अहंकार, महत्तत्व, इसको भी पार जब किया अब आई प्रकार।